आयत नंबर 160 से देखेंगे। कज़बत कौम लूत निल मुरसलीन इस काल लहुम अखूहुम लूतुन अला तत्तकून। कौमे लूत ने भी नबियों को छुटलाया, इनसे इनके भाई लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम अल्लाह का खौफ नहीं रखते? मैं तुम्हारी तरफ अमानतदार रसूल हूँ, बस तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। मैं तुमसे इस पर कोई बदला नहीं मांगता, मेरा अजर तो सिर्फ अल्लाह ताला पर है जो तमाम जहानों का रब है। क्या तुम जहान वालों में से मर्दों के साथ शहवत रानी करते हो और तुम्हारी जिन औरतों को अल्लाह ताला ने तुम्हारा जोड़ा बना दिया इनको छोड़ जाते हो? बल्कि तुम हो ही हद से बढ़ने वाले। उन्होंने जवाब दिया, ऐ लूत, अगर तू बाज ना आया तो यकीनन निकाल दिया जाएगा। आपने फरमाया, मैं तुम्हारे काम से सख्त नाखुश हूँ। मेरे परवरदिगार मुझे और मेरे घराने वालों को इस वबाल से बचा ले जो ये करते हैं। बस हमने इसे और उसके मुतल्लकीन को सबको बचा लिया, बजुज एक बुढ़िया के वो पीछे रहने वालों में हो गई, यानी उनकी बीवी। फिर हमने बाकी और सबको हलाक कर दिया और हमने उन पर एक खास किस्म का मीह बरसाया, बस बहुत ही बुरा मीह यानी बारिश थी जो वो डराए हुए लोगों पर बरसा। ये माजरा भी सरासर इबरत है, इनमें से भी अक्सर मुसलमान न थे। बेशक तेरा परवरदिगार ही गलबे वाला और मेहरबानी वाला है। ये थी आयत नंबर 160 से 174, 175, 160 से 175, 162-175। हम इसके दो उनवान लिखेंगे। पहला उनवान है, बीवी पैगंबर की थी मगर कौमी रिवायात से ऊपर उठ न सकी। दूसरा टॉपिक है इन आयात का, नफ्स की पूजा करने वालों का बुरा इंजाम। कौमे लूत पे बात पीछे हो चुकी, यहाँ जिस बात को हम थोड़ा सा देख सकते हैं वो क्या है कि बाज़ दफ़ा हम कुछ लोगों के साथ नस्बत जोड़कर ये सोचने लगते हैं कि वो बचेंगे तो हम भी बच जाएंगे, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि किसने कहा कि वो भी बचेंगे और किसने ये बात कह दी कि अगर वो बच गए तो दूसरों को भी बचा लेंगे। इसलिए कभी किसी के ऊपर अगर उम्मीद रख कर कोई गुनाह किया जाए तो अल्लाह से उसके ऊपर तौबा करने की ज़रूरत है और अपने आमाल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है कि अल्लाह तो किसी और की आस पर रहने की बजाय हमें खुद ही नेकियों को करने की तौफीक अता फरमा। हज़रत लूत की बीवी को गैर मुस्लिम बीवी नहीं थी, मुसलमान थी, लेकिन अपने ख़ानदान से नहीं उठ सकी। बस दफ़ा ख़वातीन अपने ख़ानदान और अपनी बिरादरी को आखिरी वक्त तक इतना ज़्यादा अहम समझती हैं कि शौहर के साथ सारी ज़िंदगी रहने और उसके घर वालों से फैज़ पाने के बावजूद भी उनको अपना घर ख़ानदान नहीं भूलता। तो इस वाक्य में इस पे भी बात है कि हक के मुकाबले में जब हम बिरादरी और ख़ानदान की बात को अहमियत देते हैं तो बाज़ दफ़ा अल्लाह की पकड़ का शिकार हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि ये कौम शहवत परस्ती की हद को पार कर चुकी थी कि इनके लिए इनकी बीवियां काफ़ी नहीं हुई कि वो लड़कों के साथ इस फेल को करने लगे। हज़रत लूत ने जब इनको अल्लाह का पैगाम दिया, तकवा की तालीम दी, तो उनको ये बात समझ नहीं आई। क्यों? कि जब किसी इंसान के ऊपर गुनाह का नशा छा जाता है तो उस वक्त वाकई वो एक एडिक्ट शख्स की तरह बेहोश होने लगता है और जज्बात का नशा सब नशों से बुरा नशा है कि बाज़ दफ़ा आंखों देखे इंसान को दरिया में कूदने के लिए भी हुक्म दे देता है और इंसान उसकी बात को सुन के मानने के लिए तैयार हो जाता है। अल्लाह ताला हमें हमारे नफ्स पे काबू पाने की तौफीक अता फरमाए। कज़्ज़ब असहाबुल अईकतिल मुरसलीन एका वालों ने भी रसूलों को छुटलाया, जबकि इनसे शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम्हें डर खौफ नहीं? मैं तुम्हारी तरफ अमानतदार रसूल हूँ, अल्लाह का खौफ खाओ और मेरी फरमाबरदारी करो। मैं इस पर तुमसे कोई उजरत नहीं चाहता, मेरा अजर तमाम जहानों के पालने वाले के पास है। ना पूरा भरा करो, कम देने वालों में शमूलियत ना करो और सीधी सही तराजू से तोला करो। लोगों को इनकी चीजें कमी से ना दो, बेबाकी के साथ जमीन में फसाद मचाते ना फिरो। इस अल्लाह का खौफ रखो जिसने खुद तुम्हें और अगली मखलूक को पैदा किया। उन्होंने कहा, तू इनमें से है जिन पर जादू कर दिया जाता है और तू तो हम ही जैसा इंसान है और हम तो तुझे झूठ बोलने वालों में से समझते हैं। अगर तू सच्चे लोगों में से है तो हम पर आसमान के टुकड़े गिरा दे। कहा कि मेरा रब खूब जानने वाला है जो कुछ तुम कर रहे हो। चूंकि उसने इन्हें झुटलाया तो इन्हें साइबान वाले दिन के अजाब ने पकड़ लिया, वो बड़े भारी दिन का अजाब था। यकीनन इसमें भी एक बड़ी निशानी है और इनमें से अक्सर मुसलमान न थे। कौन से मुसलमान? मानने वाले मुसलमान। और यकीनन तेरा परवरदिगार बड़े ही गलबे वाला और मेहरबानी वाला है। ये थी आयत नंबर 176 से 191, 176 से 191। इन आयत के भी हम दो टॉपिक लिखेंगे। पहला टॉपिक है इखलाकी और मुआशरती खराबियों की जड़। फिर स्लैश डाल के आप लिखेंगे मीज़ान में फ़र्क करना। मीज़ान यानी तराजू, बैलेंस यानी बैलेंस को सीधा ना रखना, हर इखलाकी यानी हर मॉरल और सोशल ईवल की रूट है, यानी रूट कॉज ऑफ द ईवल, हर ईवल की क्या है कि जब हम दूसरों के बीच में फ़र्क करते हैं। कौम शुएब का तस्करा हम पीछे से पढ़ चुके कि ये वो लोग थे कि जो नापतोल में कमी करते थे। देखा जाए तो अगर नापतोल में कमी सिर्फ चीज़ों की कमी का नाम नहीं है, बल्कि इंसानों को उनके हक देने की, उनके हक उनसे छीनने की, जिसको हक देना था उसको ना देना, या जिसको नहीं देना उसको उसके हक से ज़्यादा दे देना, ये किसी भी सोसाइटी के बिगाड़ की दलील होती है। जो मेरिट की बेस पे सिलेक्ट हो सकें वो तो अनएम्प्लॉयड फिरें, और जिनके हाथ में कुछ भी नहीं वो सिर्फ चंद लोगों से अपने ताल्लुकात की बुनियाद पे कोई जॉब्स को पालें, ये किसी मुआशरे के बिगाड़ और वहाँ के फसाद की बुनियाद बनती है। एक ही चीज़ है जो इंसान को अपने साथ, अपने लोगों के साथ, अपने मुआशरे और अपनी जगहों के साथ मुखलिस कर सकती है, और वो है अल्लाह का खौफ। जब अल्लाह का डर निकल जाता है तो इंसान कभी भी दूसरों के हक नहीं दे सकता। अल्लाह के नबी जब भी आते थे तो अपनी निस्बत अल्लाह की तरफ करते थे, इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, मैं तुम्हारी तरफ रसूल हूँ बा अमानत, अल्लाह की तरफ से। ये जुमला क्या बताता है कि जो शख्स लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, लोगों को उसके ऊपर एतबार भी होना चाहिए। एतबार अगर लोगों के दिल से निकल जाए तो बाज़ दफ़ा फिर वो उसकी अच्छी बात भी नहीं लेते, और इसी चीज़ के लिए हर दौर के नबी ने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने पे किसी किस्म के अजर की उम्मीद नहीं रखी। क्योंकि जब किसी के बीच में रुपये पैसे का लेन देन होने लगता है तो बाज़ दफ़ा फिर उससे वो एतबार ख़त्म हो जाता है जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए किसी काम को करने के लिए होता है। इसमें हम सब के लिए भी एक अजर है कि अल्लाह कभी हमें तौफीक दे अल्लाह के दीन का कोई काम करने की, तो कभी उसके अंदर किसी मादी चीज को, किसी ज़ाती फायदे को, किसी माल दौलत को न रखा जाए, ताकि लोग उस बात करने वाले को बिल्कुल गैर जानबदारी समझें और उसको उसी की नजर से देखें। फिर इसके बाद अगला टॉपिक अगर इस हिस्से का हम लिखेंगे तो वो क्या था, अपने बाप दादाओं के तरीके को सच्चा जानते थे इसीलिए पैगंबर की बात को अहमियत न दी। बहुत ही खौफनाक आयात थी, कहते थे हमारे ऊपर आसमान से टुकड़े भेज, अजाब गिरे। क्या ख्याल है वो इतने निडर थे? निडर नहीं थे। उनको अपने बाप दादा के तौर तरीके, उनके रस्म और रिवाज, उनका तर्ज जिंदगी इतना अजीज था कि वो सोचते थे कि ये हम जो कर रहे हैं बड़े सच पे हैं और ये नबी झूठा है। हर दौर में देखिए जब सच्ची दावत आती है ना तो लोग इस बात में बहुत डाउटेड फील करते हैं कि ये बात जो पिछले 50 साल, 40 साल, 60 साल से हमारी रिवायात में शामिल है, ये गलत कैसे हो सकती है। छोटी सी मिसाल दूंगी सिर्फ सिंपल समझाने के लिए, जैसे बारात की बात है, हमारे कल्चर में बारात ऐसे रच बस चुकी है जैसे जिस्म के अंदर खून रचा हुआ है। अब अगर एक बंदा पहली दफा हमें ये बात कहे कि इस्लाम में बारात का कोई तसव्वुर नहीं, तो बहुत सारे लोग जो है ना इस बात को कहेंगे ये बंदा ही झूठा है, ये बात गलत है। अच्छा भाई, इस बारात करने पर आता है कोई अजाब तो आ जाए। ये कैफियत है यहाँ कि जब इंसान कई साल सदियों से एक ही तरीका चलता देखते हैं तो उनको लगता है कि जो बात अल्लाह के हुक्म से हो रही है वो गलत होती है। मैं जानती हूँ कुछ लोग कुरान की तरफ आते हैं फिर नहीं आ पाते, क्यों? वो जहन में वो गुतियां नहीं सुलझती कि अच्छा ये बात है, अच्छा इसका मतलब है कि ये भी गलत है, फिर ये भी गलत है, फिर मैं तो बहुत बदल जाऊंगी। अच्छा इसका एक ही इलाज है कि अभी मैं और सोच लूं, और जो और सोचते हैं फिर वो कम ही आते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए हम सबको अपने लिए भी कि अल्लाह जो हक है उस पर दिल जमा दे, कभी बाप दादा के नाम लेकर उनके तौर तरीकों की वजह से हम अल्लाह के दीन को और हक को ना छोड़ें। व इन्नहु लतनज़ीलु रब्बिल आलमीन, और बेशक ये कुरान पाक रब्बुल आलमीन का नाजिल फरमाया हुआ है, इसे अमानतदार फरिश्ता लेकर आया है, आपके दिल पर उतरा है, क्या आप आगाह करने वालों में से हो जाएं? साफ अरबी जुबान में है, अगले नबियों की किताबों में भी इस कुरान का तस्करा है, क्या इन्हें ये निशानी काफी नहीं कि कुरान की सच्चाई को तो बनी इसराइल के उलमा भी जानते हैं, और अगर हम इसे किसी अजमी शख्स पर नाजिल फरमाते यानी गैर अरब, बस वो इसके सामने इसकी तिलावत करता तो ये इसे बावर करने वाले न होते। इसी तरह हमने गुनाहगारों के दिलों में इस इनकार को दाखिल कर दिया है, और वो जब तक दर्दनाक अजाबों को मुलाहिजा न कर ले ईमान न लाएंगे, बस वो अजाब इनको अचानक आ जाएगा, इन्हें इसका शऊर भी न होगा। इस वक्त कहेंगे कि क्या हमें कुछ मोहलत दी जाएगी, बस क्या ये हमारे अजाब की जल्दी मचा रहे हैं? अच्छा ये भी तो बताओ कि अगर हमने इन्हें कई साल भी फायदा उठाने दिया फिर इन्हें वो अजाब आ लगा जिनसे ये धमकाए जाते थे, जो कुछ भी ये इस्तेमाल करते रहे इसमें से इनको कुछ भी फायदा न पहुँचेगा, हमने किसी बस्ती को हलाक नहीं किया मगर इसी हाल में कि इसके लिए डराने वाले थे, जिक्रा वमा कुन्ना ज़ालिमीन, नसीहत के तौर पर, और हम जुल्म करने वाले नहीं। ये थी आयत नंबर 192 से 209, 192 से 209 इनायात के टॉपिक लिखेंगे। पहला टॉपिक है इंजार, टू वॉर्न। सब किताबों का बुनियादी मकसद। कुरान पाक से पहले जितनी भी इल्हामी किताबें नाजिल हुई सब में बहुत कुछ था, लेकिन जिसको आप एक लफ्ज में कह सके कि बुनियादी मकसद किसी किताब के दुनिया में भेजे जाने का क्या होता है, कि लोगों को डराया जाए। आज लोग कुरान पढ़ने पढ़ाने की तरफ जब आते हैं तो कहते हैं हम नहीं आते, ये डराते बहुत है। तो क्यों ना डराए, जो निडर हो क्या उसको तसल्लियां दी जाएंगी कि और बेखौफ हो जाओ। देखिए जो खौफ वाले होते थे ना अल्लाह के नबी के सहाबी, वो कुरान पाक की आयत सुन के इतना डर जाते थे, कांपने लगते थे कि अल्लाह के नबी को तसल्ली देने के लिए उनको कहना पड़ता था डरो नहीं, याजूज माजूज भी इसी में होंगे। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से ये सुना कि कल क्यामत के दिन अल्लाह ताला हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहेंगे कि अपनी औलाद को छांटो। कहा अल्लाह ताला कैसे उनको अलग करूं, कहा हर 1,000 में से 999 को आग की तरफ कर दो और एक को जन्नत की तरफ कर दो, यानी 999 विल गो टू हेल और एक जो है वो जन्नत की तरफ जाएगा। ये बात सुन के सहाबा इकराम इतना कांपे, अल्लाह के नबी हम कहाँ जाएंगे, हर 1,000 में एक जन्नत में जाएगा। अल्लाह के नबी को कहना पड़ा गम ना करो, याजूज माजूज भी इसी में काउंट किए जाएंगे। जिनका ये हाल होता था, कुरान पाक की एक आयत है ना कि अल्लाह ताला से डरो, वत्तकुल्लाह हक्का तुकाती ही, उतना डरो जितना उससे डरने का हक है। सहाबे किराम काम काम के है रह गए, अल्लाह के नबी कैसे डरे, हम तो जितना डर सकते उतना डरेंगे और हमें पता है अल्लाह से तो उससे बहुत ज्यादा डरना चाहिए जितना हम डरते हैं। तो कहा अच्छा गम ना करो, फत्तकुल्लाह मस्तता तुम, जितना डर सको उतना डरो। उनकी तो वो हालते थी, वो तो नेकियां करते थे फिर भी डरते थे, और आज हम गुनाह करते और फिर भी कहते हमने क्या किया। जरा कोई सख्त बात करे कहते नहीं ये बड़ी सख्त बात है, ये बड़ी मुश्किल बात है। तो अल्लाह कह रहे हैं जिक्रा, ये तस्कीर है, ये याद दहानी है। वो लोग तो निडर बैठे हुए हैं। आप माएं भी इस बात को देख सकती हैं, कुछ बच्चे तबीयत से बड़े नरम मिजाज होते हैं, वो हर बात पे माँ की बात पे एकदम कांप जाते हैं। आप उनको जरा बात करें वो डरे तो आप कहते बेटे डरने की बात नहीं है, मैं तुम्हें कुछ कहने नहीं लगी। और एक बच्चा जो बड़ा ही सरकश और जिद्दी है, अब वो बेखौफ है आपसे, फिर जब मौका मिलता है आप उसको नसीहत करती है। तो अमूमन देखा जाए तो इंसानों की हालत यही होती है कि वो अपनी जिंदगियों में मस्त होते हैं, उनको कुछ अच्छा नहीं लगता, जो भी उनको दिल चाहता है वो करते रहते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इन लोगों को कहो कि डर जाओ। ये कुरान, ये पैगंबर, ये चीजें क्यों आती हैं, ताकि लोगों को उनकी निडर जिंदगी से निकाल के एक खौफ वाली जिंदगी की तरफ माइल किया जाए। इसके बाद दूसरा टॉपिक भी हम इसमें लिखेंगे, पैगंबर का इनकार, अजाब को दावत देना है। जब कोई अपने दौर के पैगंबर, यानी कल के दौर में वो रसूल और पैगंबर थे, आज के दौर में हक की दावत देने वाले होते हैं, जब कोई इनफरादी तौर पे किसी की दावत को छुटला दे यानी उसको नहीं मानना, और जब कोई गिरोही या कौमी सतह पे किसी हक वाले का इनकार करता है, तो ये इस बात का ऐलान होता है कि अब इस कौम पे अजाब आएगा। हम सब दीन की बातों को सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमें छोटे छोटे अजाबों से बचा लेता है, लेकिन अगर किसी बस्ती की तरफ अल्लाह अपने किसी रसूल को भेजता था और जब पूरी बस्ती उसका इनकार कर देती थी, तो उसके बाद अल्लाह ताला उस नबी को वहां से निकाल के वहां पे अजाब भेज देता था। तो हमें इसमें अपने लिए अमल की जो बात लेनी है वो क्या है कि जब कभी, चाहे वो कैजुअल हो या कोई जाब्ता बाजाब्ता तौर पे हमें दीन के किसी हुक्म की दावत दे, फौरन मान लीजिए, अमल करना बाद की बात है, नियत कर लीजिए ये कहने वाला ठीक कह रहा है, मेरा अमल अभी नहीं, अभी मैं कमजोर हूँ, ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे। लेकिन जब लोग बहुत पढ़े लिखे होने के नाते से, जब बहुत इंटेलेक्चुअल होने के नाम पे जब हक का मजाक उड़ाने लगते हैं ना, वो कहें ये नमाजें क्या होती हैं, नमाज तो वही है जो बंदा दिल से पढ़ ले, और लोगों की खिदमत करना ये भी बहुत बड़ी नेकी है। जब दीन के साथ इस तरह की अटकलबाजियां होती हैं तो ये अल्लाह को बुलाने वाली बात होती है कि अल्लाह तो अब हमें बुला, इस दुनिया को हमसे पाक कर दे। अल्लाह ताला हमें कभी इसकी तौफीक ना दे कि हम ऐसी चीजों की तरफ पलट के भी देखें। फिर आगे फरमाया, इस कुरान को शैतान नहीं लाते, ना वो इसके काबिल हैं, ना इन्हें इसकी ताकत है, बल्कि वो तो सुनने से भी महरूम कर दिए जाते हैं। पर तू अल्लाह के साथ किसी और को माबूद ना पुकार, तू भी सजा पाने वालों में हो जाएगा। अपने करीबी रिश्तेदारों को डरा दे, इनके साथ आजजी से पेशा, जो भी ईमान लाने वाले होकर तेरी दावेदारी करे, अगर ये लोग तेरी नाफरमानी करें तो ऐलान कर दे कि मैं इन कामों से बेजार हूँ जो तुम कर रहे हो। अपना पूरा भरोसा गालिब मेहरबान अल्लाह पर रखो, जो तुझे देखता रहता है जबकि तू खड़ा होता है, और सजदा करने वालों के दरमियान तेरा घूमना फिरना भी वो बड़ा ही सुनने वाला और खूब जानने वाला है। ये थी आयत नंबर 210 से 220 तक, 210 टू 220 इन आयत के टॉपिक लिखेंगे। पहला टॉपिक है अल्लाह की तरफ बुलाने वाला लोगों के आगे भी आजजी करने वाला हो। ये आजजी से कौन सी आजजी होती है? ह्यूमिलिटी कौन सी है कि उसकी टोन, उसके बात करने के अंदाज, उसके लोगों को मुखातिब करने के स्टाइल में कोई इस तरह की रौनत नहीं होनी चाहिए कि जैसे कोई किसी गुनाहगार को पुकारता है। बस दफा होता क्या है कि जब अल्लाह ताला हमें तौफीक दे देता है कि हम अल्लाह ताला की तरफ लोगों को बुलाएं या हम खुद नेकी पे अपनी तौफीक के मुताबिक कोशिश करें, तो ऐसा लगता है कि जैसे सारी दुनिया गुनाहगार है। और हकीकत है, देखिए हम आम तौर पे जो खाते पीते हैं ना, हमें ठीक लगता है। आप किसी साइंटिस्ट से पूछे, वो कहेगा जो पानी पीते हैं उसमें इतने जर्म्स हैं, आपने जो अभी फ्रूट खाया इसको धोया नहीं, इस पे ये था। जिसकी जो नजर होती है ना, उसको वो चीज दिखने लगती है। आप माइक्रोस्कोप के नीचे कोई चीज रखेंगे ना, आपको उसकी छोटी छोटी चीजें भी बड़ी दिखेंगी। इसी तरह आप डॉक्टर्स को देखें, वो उसको कैलोरीज की बेस पे करेंगे। आप किसी देहाती को देखेंगे ना, वो खाना खाते पकाते क्या कहेंगे, हैवी होनी चाहिए, पेट भरना चाहिए। ये क्या तुम ये भी उतार दोगे, ये भी निकाल दोगे? मसलन जैसे मिसाल दूंगी दूध की, हम लोग जो घोल मिल के नाम पे दूध पीते हैं, इसलिए नहीं पीते कि उसमें फैट होगी, और लोग अपने शौक से 1% 2% फैट वाला दूध लाते हैं। मैं सोचती हूँ अगर कोई देहाती जो वाकई अपने हाथ से भैंस का दूध निकालता हो, वो किसी ऐसे मुल्क में आ जाए, तो वो कहेगा मैं दूध की कीमत पे पानी क्यों खरीदूं, उसको पानी लगेगा ना। तो सोच का फर्क ही हुआ कि हर एक की नजर फर्क है। इसी तरह जो बंदा करीब से अल्लाह के दीन को देख लेता है ना, तो उसको वो बारीक बारीक गुना भी दिखने लगते हैं जो आम नजर में नहीं दिखते। और इसकी मिसाल हम खुद हैं। कुरान नहीं पढ़ते तो हम कहते हैं बहुत अच्छे हैं, माशाल्लाह, हम में क्या कमी है, लो शुक्र है हम गले में तो दुपट्टा डालते हैं, चलो शुक्र है दो नमाजें तो पढ़ती हूँ। हर एक अपने आप को कुरान पढ़ने से पहले बड़ा नेक समझता है, लेकिन जो ही आप कुरान के पास आते हैं तो आप कहते हैं अरे ये भी गलत, ओहो ये भी ठीक नहीं, इसमें भी खराबी है, ये भी खराब है। अब ये निगाह मिलना अल्लाह की तरफ से एक नेमत है और मिलनी चाहिए। इसी को फुरकान कहते हैं, इसी को फरासत कहते हैं। अब होता क्या है कि जब हम इतने पिकी हो जाते हैं गुनाह और सवाब के नाते से, तो होना क्या चाहिए कि हम अपनी इसलाह करें। अब जब हम लोगों को देखते हैं, लोग उस महफिल में एंजॉय कर रहे होते हैं, और आप कुरान और सुन्नत के नाते से उनकी खामियां आपके खुद ही जहन में आने लगती हैं, आपको जजमेंटल नहीं बनते, जुबान पे बात आती है, फिर ही तनकीद होती है। आप सोचते हैं अरे ये भी गलत, ये भी ठीक, ये भी नहीं ठीक। आप खुश होने की बजाय गमगीन होके आते हैं, आप दुखी होते हैं, आप कहते हैं अल्लाह इनको क्या, देखो ये इतने अच्छे लोग हैं और एक काम इनका कितना खराब है। अब जब ये सोच आती है ना, अब इसके बाद दो राय हो सकती हैं। एक तो यह है कि आपके दिल में उन लोगों के लिए और आजजी आए और नरमी, आप झुके, वक्फिस जनाह कलिमन तबक मिनल मोमिनीन, यानी आपके हाय अल्लाह ये कितने अच्छे लोग हैं, लेकिन इनको भी पता ही नहीं। जैसे कोई बीमार होने वाला होता है, उसकी बॉडी में सिम्टम्स शुरू हो चुके होते हैं, डॉक्टर को पता चल जाता है, मरीज को नहीं पता होता, वो कहता है मैं ठीक हूँ, डॉक्टर कहते हैं इसको पता ही नहीं इसके अंदर अब ये बीमारी शुरू हो गई है, अब कुछ साल या कुछ महीने की देर है, ये तो बहुत बढ़ जाएगी। तो वो निगाह का फर्क जो है ना, या तो आपको दूसरे के लिए मोर पिटी फीलिंग, मोर रहम की बातें आएंगी, और दूसरी कैफियत होती है हाँ ये भी गुनाहगार, हाँ इनको हम तो हाथ नहीं मिलाते, हम तो किसी बिदती से हाथ नहीं मिलाते, हम तो किसी ना मुशरिक से नहीं करते, हम तो ये नहीं, हम तो ये नहीं। ये जो हम तो नहीं वाली कैफियत है ना, ये तकब्बुर वाली कैफियत। अल्लाह कहता है जब तुम्हें अल्लाह ने समझ दे दी है, तो अल्लाह का पहले तो शुक्र अदा करो, फिर दूसरों को बुलाओ, इतने नरम हाथों से उसको पकड़ो कि जैसे कोई डॉक्टर मरीज का हाथ पकड़ता है। देखिए कि आप किसी चीज की सफाई करते हैं ना, छोटी सी बात हुई है, तो मैं थोड़ी सी एक और मिसाल आपके साथ शेयर करूं कि ये गुनाह जो होते हैं ना, ये जख्म होते हैं, ये नाफरमानियां, ये नफ्स की बातें और जाहरी बातनी जो भी चीजें होती हैं। अब हर चीज की सफाई का एक मुख्तलिफ अंदाज है। मसलन आपके घर में आपके चूल्हे पे पकने वाला खाना जिसमें आप पकाते हैं, आपका एक बर्तन है, देखची है, आप उसमें कोई खाना खूब पकाते हैं चावल, अब उसके अंदर अंदर चावल भी लग गए, उसके अंदर कुछ ना कुछ सख्ती, अब उसको आप कैसे साफ करेंगे? आप स्क्रब लेते हैं, बाद अब सिल्वर की तारें लेके उससे साफ करते हैं, क्योंकि आपने उस देगची को साफ करना है। अब इसी तरह का कोई एक जख्म अगर आपकी इस कलाई पे लग जाता है, हाथ जल गया, कुछ हुआ, आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कैसे साफ करेगा उसको? क्या वो स्क्रब से साफ करेगा? वो तो मेरा ले अपने हाथों पे भी रुई के फाहे डाल लेगा। सफाई इसकी भी होनी है, उसने आपके जख्म से पस निकालनी है, और एक सफाई आपने बर्तन की, दोनों में फर्क है ना, वहां सख्त हाथ चाहिए, यहाँ नरम हाथ चाहिए। एक दीन की तरफ बुलाने वाले को इस बात पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए कि कहाँ सख्त हाथ लगेगा, कहाँ नरम हाथ लगेगा। लेकिन जब हमारे दिलों में बड़ाई आने लगती है ना, तो फिर हमारा हाल क्या होता है? या फिर एक और छोटी मजीद बात कर दूं, प्रैक्टिकल थिंग करूंगी, जो शायद आपके लिए टू अर्ली, लेकिन मैं इसको फील कराने के लिए कहती हूँ। एक वो लोग होते हैं जो आपके साथ हर वक्त ताल्लुक रखते हैं, जैसे आप जैसे लोग, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अब एक महीने के करीब होने वाला है कि आप कुरान की महफिल में बैठने वाले हैं, ठीक है। और एक वो है जैसे रात को कहीं दर्स होगा हमारा, या कहीं हो गया, या कल परसों हुआ, होते हैं ना जो लोग बेचारे सिर्फ एक पार्टी के मूड में आते हैं, दीन की तरफ बुलाने वाले का रवैया दोनों जगह बिल्कुल फर्क। अगर वो अपने स्टूडेंट्स को कह देगा ना अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है इनको रूल पिछले वीक बताया था, आज भी फिर बताएं, अच्छा ये गलती करें कोई बात नहीं, ये गलत तरीका होगा। उसको उस तरह देखना चाहिए जैसे किसी ऐसे शख्स को देखे कि जिसके साथ वो पूरी मगजमारी कर चुका, फिर सेम वही बात देखे तो उसको तकलीफ होगी। और जो उस्ताद अपने शागिर्दों को इन बातों पे नहीं टोकते ना, आस्ते आस्ते उनके जो शागिर्द प्रोड्यूस होते हैं ना, वो डिफॉल्टेड होते हैं, वो डिफेक्टेड होते हैं। हमारी मशीन खराब होती है ना तो प्रोडक्ट भी खराब होने लगता है। उस्ताद जब जरा नरमी करते हैं ना रूल को तोड़ने वाली, तो उनके शागिर्द कभी रूल फॉलो नहीं करेंगे। वो सिर्फ गवर्नमेंट के डर पे तो ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो कर लेंगे, लेकिन अमली जिंदगी में कभी नहीं करेंगे। और जो उस्ताद की एक दफा की नहीं सुनता ना, याद रखे फिर वो उसकी बातों को सुन के अल्लाह की भी नहीं ज्यादा सुनेगा। ये लिख लें एक बात, मैं अपनी बात नहीं कर रही वल्लाह ही, मैं तो थोड़े दिन की मेहमान हूँ ना, आपके साथ और भी बहुत से उस्ताद होंगे और अल्लाह आपको बड़े मौके देगा जिंदगी में सीखने के। एक बात तलपल्ले से बांध ले। और मुझे किसी ने कही थी आज शायद, जहाँ नहीं वहां नॉर्वे में एक खातून थी, शक्ल मेरे जहन में, नाम भी याद है, लेना नहीं चाहूंगी। तो हमने आखिर में पूरा कोर्स किया और उनसे पूछा आपने पूरे वक्त में क्या सीखा या आपको क्या कमिटमेंट लगी, तो उन्होंने ये कहा था कि मैंने ये सीखा कि जो बात उस्ताद कहे उसको बांध लो कि इस पर मैंने अमल जरूर करना है। लेकिन इसके बरक्स जो लोग कभी कभी मिलते हैं, आप देखते हैं वो बातें भी कर रहे हैं, आपको पता है वो टेढ़े मेढ़े बैठे हैं, आप हंस के डाल देते हैं, क्या ख्याल है आगे क्यों नहीं आते, क्या आप डरते हैं, क्या बात है, लोग तो आगे की सीट्स के ज्यादा पैसे देते हैं। इस तरह का स्टाइल हो सकता है। तो उस्ताद को कभी आप बाहर देखें तो कैजुअल मूड में देखें, और उसको क्लासरूम में देखें तो आपको स्ट्रिक्ट लगे, तो ये कॉल और फेल का तजाद नहीं है। ये फर्क इस बात का है कि कहाँ नरमी और कहाँ सख्ती। अल्लाह ताला हमें हिकमतें अता फरमाए कि हम सही तरीके से इस बात को कर सकें, ताकि जो इसका रिजल्ट निकले वो बड़ा खूबसूरत निकले। इंसान प्रोड्यूस करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। प्रोड्यूस करने से मुराद है कि उनकी इसलाह करना। आप मानते हैं इस बात को? आपको अपना घर साफ करना ज्यादा आसान लगता है या अपने बच्चों के अखलाक संवारने आसान लगते हैं? घर तो आप यूं साफ करके रखते हैं, इंचों मिंचों में साफ करते हैं, बच्चे सारी जिंदगी आप कहते हैं ये वो नहीं बने जो मुझे बनाना था, तो अल्लाह करे कि हमारे लिए ये काम आसान हो जाए। दूसरा उन्वान लिखिएगा, बात शुरू करो करीबी लोगों से। इस आयत को हाईलाइट करवाना चाहती हूँ। आयत 214 है, वान जी रशीर अतकल अकरबीन। ये दूसरी वही थी जो अल्लाह के नबी पे उतरी थी। पहली क्या उतरी? इकरब इस्मी रब्बी कल्लजी खलक। खुद पढ़ो, अल्लाह के नाम के साथ जोड़ो अपने काम को, अपना आप को जोड़ो। और फिर उसके बाद जब ये उतरी, मारूफ वही में से जो दूसरी वही थी वो यही थी कि वान जी रशीर अतकल अकरबीन, के अल्लाह के नबी अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए। इसी पे फिर आपने अपने पूरे खानदान वालों की एक दावत की, उनको खाने पे बुलाया, पूरे कबाइल आए, और वहां फिर आपने उनको खूब अच्छा खिलाया पिलाया, और उसके बाद फिर आखिर में कहा कि मैं आपको कुछ कहूँ, और आपने उनको तबलीग की। इसमें हमारे लिए अमल की बेसिकली एक बात है, और वो क्या है कि जब कभी हमें कोई हक बात समझ आ जाए ना, तो हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे रिश्तेदारों को भी समझ आ जाए। बस लोग जब ऐसा काम करते हैं और उसमें दावत और खाने पीने का एहतमाम करते हैं, तो लोग सोचते हैं कि ये क्या बात है, लो जी खाने पे क्यों बुलाए, आने तो आए, ऐसे ही आए तो आए, ये गलत है। मैं सोचती हूँ ये बहुत लाजमी है, इंसान की फितरत है ना। बाज लोग जैसे जिक्र किया था पेट के रास्ते मुसलमान होते हैं, बाज को खाना पीना अच्छा लगता है, ये सुन्नत है कि आप लोगों को इतनी दावतें खिला चुके हैं ना, अब एक दावत आप अल्लाह के नाम पे खिलाएं, लोगों को जमा करें। आपने ये पूरा महीना कुरान सुना है, ईद आ रही है, हर घर में ईद पे जरूर कुछ ना कुछ एहतमाम होगा। आप सब साथी अगर इस आयत को पढ़ते हुए नीयत कर लेना कि वान ज़ी रशीर अतकल अक़रबीन, अगर आप अपने रिश्तेदारों के करीब रहती हैं तो, और बात तो दोस्त अपनों से भी प्यारे लगते हैं, आप सबको घर में ईद पार्टी पे बुलाएं, एक मौका रखें, और उसके ऊपर फिर आप उनको कुछ मैसेज दें। कोई सुनाने वाला नहीं मिलता, आप इंटरनेट से कोई चीज लेके सुना दें किसी तरीके से, और फिर खाना भी बेहतरीन खिलाएं, पूरा एक्सपीरियंस शेयर करें कि हमने क्या सीखा, हमें क्या महसूस हुआ। देखिए हर बंदा मस्जिद में नहीं आता, ये याद रखिएगा, हर बंदा इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ना पसंद नहीं करता, अभी उनका वो लेवल नहीं होता। स्कूल के नाम से तो बच्चे भी डरते हैं, बड़े क्यों ना डरेंगे। आप कह के तो देखें कि हम किसी जगह एक इदारा बना के वहाँ पूरे यूनिफॉर्म के साथ पढ़ने लगे, तो कहेंगे नहीं, कमिटमेंट से डर लगता है। और आप उसी चीज को अपने घर के ड्राइंग रूम में एक या दो बार बुलाएं, वो बड़ी खुशी से आएंगे। एक दफा वो कुछ खाने को ले आए, एक जगह आप कर लें, कभी वन डिश कर ली, तो ये चीजें लोगों को दीन की तरफ लाने में मदद देती है। कोशिश करें आप तक जो बात पहुंच गई है वो दूसरों को भी अल्लाह ताला पहुंचाना आसान करे। कुरान की किरणें बेसिकली एक कोर्स है छोटा सा, जिसमें हमने सूरह यासीन, सूरह वाकिया, सूरह हुजरात, फिर इसी तरह घर के मामले से जैसे शौहर बीवी के ताल्लुक पे, बच्चे और माँ बाप के ताल्लुकात पे लेक्चर, टोटल 16 क्लासेस हैं। आखिर में वो आते हैं कि जिसकी वजह से सूरत का नाम सूरत शोरा है। चलिए देखते हैं, अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, हल उनब्बियुकुम अला मन तनज़्ज़लुश शयातीन, क्या मैं तुमको बताऊं कि शैतान किस पर उतरते हैं? हर एक छूटे गुनाहगार पर उतरते हैं। उचटती हुई सुनी सुनाई पहुंचा देते हैं और इनमें से अक्सर छूटे हैं। शायरों की पैरवी तो वो करते हैं जो बहके हुए हों। क्या आपने नहीं देखा कि शायर एक-एक जंगल में सर टकराते फिरते हैं, और वो कहते हैं जो वो करते नहीं, सिवाय इसके जो ईमान लाए और नेक अमल किए और बकसरत अल्लाह का जिक्र किया और अपनी मजलूमी के बाद इंतकाम लिया। जिन्होंने जुल्म किया है वो भी अभी जान लेंगे कि किस करवट उलटते हैं। ये थी आयत नंबर 221 से 227, 221 टू 227। इन आयत का टॉपिक है शायरी की बुनियाद तखयुल, इमेजिनेशन इंग्लिश में आप कहेंगे, यानी पोइट्री की बेस क्या होती है, इमेजिनेशन, जबकि नबुवत की बुनियाद हकीकत, रियलिटी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो बहुत सारे इल्ज़ाम लगे अल्लाह के इस प्यारे खूबसूरत रास्ते में, उनमें इल्ज़ाम ये भी था कि आप शायर हैं, आप पोइट हैं, आप इतनी रिदमिक बातें करते हैं। कुरान पाक में आयतें कुछ आती भी हैं आखिरी पारों में आप पढ़ेंगे, जिसमें आप पढ़ते हैं वस्समाई और पूरी छोटी छोटी आयतें, वो वाकई पढ़ने में एक रिदम लगता है, तो कहते थे ये शायर है। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने इन आयात में बताया कि तुम्हें पता है एक शायर अमूमी तौर पे और एक नबी में फर्क है कि नबी तो हक की बात करता है, नबी की बात सुन के तो दिल बदलते हैं, नबी की बात सुन के तो गुनाहों से नफरत होने लगती है। इसके बरक्स अमूमी तौर पे जो शायर होते हैं वो रियलिटी की बात ही नहीं करते, नबी जो कहता है वो करके दिखाता है, शायर जो कहता है वो कभी करता नहीं। क्यों? वो कहता है मैं तुम्हारे लिए आसमान से सितारे तोड़ के लाऊं, ना कभी तोड़ सकेगा ना टूटेंगे, कहने की क्या जरूरत है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पहाड़ों के अंदर नहरें खोद दूं, मैं तुम्हारे लिए दूध की नहर ले आऊं, और आप सिर्फ चंद गानों के बोल ही देख लें। इतने बुरे, एक तो शिर्क की हद तक पहुंचे होते हैं और बात तो इतने इमेजिनरी होते हैं कि बाद में वो खुद भी हंसते होंगे हीरो हीरोइन बैठ के, ये हम कह के आ रहे थे एक दूसरे को। अब शायरी पे बात हुई है तो थोड़ी सी बात कर लीजिए, क्योंकि ये मौजू बड़ा हॉट टॉपिक है। आज बाजार में शायद उतनी कुरान की किताबें नहीं बिकती जितनी पोइट्री की बिकती हैं, और बास लोगों का माल उतना कुरान और दीन की बातों पे नहीं लगता जितना ऐसा फिक्शन खरीदने पे होता है। तो पहली बात यह कि शायरी कलाम का एक हिस्सा है, जैसे नसर, जो नसर होती है ना जो स्ट्रेट आप पढ़ते हैं, और एक शायरी, शायरी बजाते खुद बुरी नहीं, उसका मौजू क्या है ये देखना पड़ेगा। जैसे आप आम एक पैरा लिखते हैं तो वो भी वल्गर टॉक हो सकती है, उसमें भी किसी की आंखों का हुसन का किस्सा हो सकता है, लेकिन शायर चूंकि बहुत ज्यादा ख्यालों की दुनिया में रहते हैं, वहमी बातें करते हैं, तो इससे क्या होता है कि वो ऐसी बातें कर देते हैं अपने जोश में कि जो शायरी के रंग में आते हैं। और आप नोट कीजिएगा कि इमेजिनरी बातें जितनी शायराना अंदाज में कही जा सकती उतनी सीधी सीधे आर्टिकल में नहीं कही जा सकती। तो अगर तो वो अच्छा है, कोई हरज नहीं। अच्छा शेर क्या होता है? मसलन अल्लाह की मोहब्बत में है कोई शेर, कोई हरज नहीं है। उसमें भी एक खास हद तक कहीं ना कहीं बाज लोग अल्लाह से बात में भी लोग इतने बेतकल्लुफ हो जाते हैं कि वो भी दुरुस्त नहीं लगता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो शेर कहा जाता है उसको नात कहते हैं। इस पे बहुत ही ज्यादा एहतियात की जरूरत है। देखिए, नात अपनी असल से कोई बुरी बात नहीं। अगर अल्लाह की नबी की मोहब्बत में किसी ने कुछ शेर लिख दिए, पहले देख लीजिए दो बातें उसमें। पहली चीज कि क्या नबी को अल्लाह के बराबर तो नहीं कर दिया? ये एक आम खराबी है कि शिर्क होने लगता है। इसकी बीसियों मिसालें मौजूद हैं, जिसको आप अगर अपनी मारूफ नातों में ही सुनना चाहें, अगर वक्त होता तो मैं आपको कुछ नातों के क्लिप सुनाती, मैंने सेव किए हुए, और जब हम डिटेल से नातों को पढ़ते हैं तो हम वो सिर्फ इस नियत से सुनवाते हैं कि देखिए ये इतनी ज्यादा आम बातें हैं जो लोग सुनते रहते हैं, लेकिन इसमें कितना शिर्क पाया जाता है। कोई मिसाल देना चाहेगा अगर किसी का जहन खुला हुआ है तो? कोई एक मारूफ जुमला, कोई ऐसी बात जो नात में लोग बोलते हैं और अल्लाह के नबी सल्लम का वो मुकाम नहीं जो कर दिया जाता है। अल्लाह के पकड़े को छुड़ाए मोहम्मद, मोहम्मद के पकड़े को कोई छुड़ा नहीं सकता। नौज़ुबिल्लाह, यानी नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह तो जालिम है, वो तो कल क़यामत के इन लोगों को पकड़ेंगे, खड़े हो जाओ इधर, और मोहम्मद आएंगे और वो उनको पकड़ के छुड़ाएंगे। ये अल्लाह के पकड़े को छुड़ाए मोहम्मद, और जिसको मोहम्मद ने कल पकड़ लिया ना कि तुम किधर जाते हो, तुम गलत काम करके आए हो, तो उसको कोई नहीं छुड़ा सकता। इससे बड़ा भी कोई शिर्क होगा? मालिक यौमिद्दीन अल्लाह, या अल्लाह के नबी भी हैं साथ? अल्लाह अकबर, बेशुमार नाते हैं, यकीन करें मैं जुबान पे नहीं लाना चाहती। लोग झूम झूम के टीवी पे, रेडियो पे, हमारी आम महफिलों में ऐसी ऐसी नाते होती हैं, अहद को अहमद बना दिया, फिर कभी लोग कहते हैं मदीने से बुलावा आया, मदीने से बुलावा नहीं आता अल्लाह के बंदो, वो अल्लाह से आता है। यानी इस तरह की शायरी, अब इस पे अलग बात करना क्योंकि पीछे हम थोड़ी सी कर चुके गलूब वाली आयतों में, मुझे इतनी तकलीफ होती है वो लोग जो इस पे वक्त लगाते हैं। सीडीज बनती होंगी, कैसेट्स बनती होंगी, रिकॉर्डिंग हो, पैकिंग होती है, फिर दुकानों पे जाती हैं, फिर बिकती हैं, और लोग ये ट्रैश खरीद के लाते हैं। यकीन करें मैं तो इस ऐसी चीज़ों को देखो एक ही लफ्ज़ में था, ट्रैश। आपका ये माल, इससे तो बेहतर था कि आप किसी जगह सदका कर देते, ये माल कहाँ जाता है? दूसरी चीज़ जो अल्लाह के नबी की शान के साथ क्या होती है कि इतनी बेतकल्लुफी से अल्लाह के नबी का नाम लिया जाता है नातों में। एक जगह मैं कहीं थी और एक खातून नात पढ़ रही थी, बार बार लफ्ज़ मोहम्मद बोल रही थी वो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरी नात में उसकी तकरार थी, लेकिन ना उन्होंने कहीं भी उसमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा और ना सुनने वाले कह रहे थे, और मैं वहां बैठी थी और मैं कह रही थी चुपके से, क्योंकि मुझे वो हदीस याद है कि अल्लाह के नबी सल्लम जब मिंबर की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे तो आपने तीनों दफा आमीन 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 कहा, तो उनमें से तीन में से एक बात क्या थी कि आपने फरमाया कि जिब्राइल आए और उन्होंने कहा कि अगर आपका नाम कोई सुने और उस पर आप पे दुरूद ना भेजे तो वो अल्लाह की रहमत से दूर हो, बद्दुआ की और आपने कहा आमीन, ऐसे ही हो। अब आप देखिए जो लोग कर रहे हैं ऐसी नात, वो उनको नहीं पता, क्योंकि वो बीच में सल्लल्ला कहेंगे तो ट्यून टूट जाएगी। तो इस तरह बेतकल्फी से बातें करना जैसे अपने दोस्तों से की जाती है, ये दुरुस्त नहीं है। सूरत हुजरात में फिर आएंगी बातें कि तुम नबी के पुकारने को ऐसा ना समझो जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। सूरत नूर के आखिर में आप लोगों ने पढ़ा, उसके बाद उसके तीसरे दर्जे पे चलिए, माँ बाप है आप उनकी मोहब्बत में कर सकते हैं, शेर पढ़िए कोई हर्ज नहीं है, नो प्रॉब्लम। मदर डे की कोई पोएम है, अभी इससे कतई नजर कि आपको मदर डे एक दिन मनाना है कि नहीं मनाना, लेकिन माँ की मोहब्बत में आपको कोई शायरी मिलती है, कोई पोएम मिलती है, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उसमें फिर वही बात है कि वो बेसिक्स ना टूटे, उनका अदब एहतराम या उनको इतना आगे ना कर दे। उसके बाद देखिए पीछे भाई बहनों की मोहब्बत में जो मर्जी करिए, कुछ ऐसी पोएम्स हो सकती हैं कि जिसमें किसी के ईमान को उभारना है, जज्बात है, कोई हर्ज की बात नहीं है। शौहर बीवी के नाम पे कोई गाने हैं तो भी, गाने से मुराद शायरी है। देखिए शायरी को अगर आप म्यूजिक के साथ गाते हैं तो वो आपके लिए एक वबाल बनती है ना, अगर विदाउट म्यूजिक अगर एक शेर है किसी गाने के भी, बिल फर्ज मैं मिसाल देती हूँ, एक बीवी अपने शौहर को सुनाती है कोई हर्ज नहीं है, लेकिन याद रखिए बात पूरी सुनिएगा, क्योंकि ऐसी बातें सिर्फ उचटती उचटती हुई सुनी जाती हैं कि उन्होंने कहा गाने गा सकते हैं, नहीं। बीवी अपने शौहर की मोहब्बत में कोई शेर बोलती है ना, उसमें म्यूजिक है ना एग्जेजुरेशन है, कोई हर्ज की बात नहीं। शोहर अपनी बीवी को देख के कोई गाना गाता है, गा ले, लेकिन कितने गाते हैं सच बताइएगा। आप जितनी खवातीन बैठी हैं आप में से शोहर ने उसको देख के गाना गाया? इवन जो लोग पहले गाने गा गा के शोहर बीवी बनते हैं वो भी नहीं गाते, वो कहते हैं अब छोड़ो रोटी पकाओ। वो चेहरा जो पहले चांद जैसा दिखता है वो फिर रोटी टेढ़ी होती है तो वो टेढ़ी दिखती है, वो नहीं कहते ये चांद जैसे चेहरे ने रोटी बनाई है, रियलिस्टिक नहीं है। यानी आप देखिए जो आखिरी बात रह जाती है शायरी में वो झूठी मोहब्बत है, इश्क माशूक कह लें उसको, आप रोमियो जूलियट कह लें, आप उसको लैला मजनू कह लें, उसको ही रांझा कह लें, आप बताइए आपस में एक दूसरे के क्या लगते थे। आज की फिल्म पूरी नहीं होती जब तक उसमें 5 या 6 गाने, मुझे नहीं पता आजकल क्या रेशियो है, पहले ये था, बहरहाल 5 6 गाने होते हैं। आप देखिए गाने का असर होता है, आपकी कोई तारीफ कर दे ना तो आपको भी आधा घंटा तक सरशारी रहेगी। जो लोग इतना आर्टिफिशियल किस्म की मोहब्बत है देखते हैं, हर फिल्म देखने वाली लड़की और लड़का ये सोच के उठते हैं कि अब मैं भी किसी से मोहब्बत करूं, कोई मैं भी किसी के लिए कहूँ, यकीन करें इसमें कोई एग्जेजुरेशन नहीं है, ये बहुत ट्रू फीलिंग्स के साथ आपको बता रही हूँ कि जो जवानी के इब्तदाई दिन होते हैं ना, जब नए नए जज्बात उठते हैं, जैसे नई नई कॉम्प्लेक्स फूलती हैं, इन दिनों में आप जब कोई गाना सुनते हैं ना तो आपका दिल चाहता है मैं भी किसी के लिए गाऊँ। आप सिर्फ इस दुनिया से म्यूजिक और सॉन्ग्स को बंद कर दें, आधी से ज्यादा लव स्टोरीज खत्म हो जाएंगी और मेरा हाल सारी फिल्में ही फ्लॉप हो जाएंगी। इवन बाज लोग ऐसी फिल्में भी बनाते हैं जिसको आप कह लें कि तारीखी नौयत की, बाज लोग इवन रिलीजियस मूवीज बनाते हैं और उसमें भी सॉन्ग्स डालते हैं। तो बहरहाल बात समझ में आ गई, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कोई अपने पेट को खून और लहू से भरे, यानी पस और ब्लड उसके पेट में आए, ये बेहतर है इस बात से कि उसको कोई शेर याद हो। लिखी हुई है हसन उल बयान के अंदर हदीस, अब बाद में वहां से देखिएगा, पढ़ के सुना देती हूँ। पेट को लहू और पीप से भर जाना जो उसे खराब कर दे, शेर से भर जाने से बेहतर है, तिर्मिजी की रिवायत है। अब जितने शेर आपकी मेमोरी में है ना, दुआ करें कि वो भूल जाए। कुरान ना याद होने में एक बहुत बड़ी वजह ये भी होती है कि हमारा जहन पोइट्री में बहुत लगता है, और मैं इस पे इतनी खुश होती हूँ जब मुझे कोई शेर याद नहीं होता। अल्लाह के नबी को शेर याद ही नहीं रहते थे, आपने एक दो दफा कोशिश भी की कैसी महफिल को अटेंड करूं जहां ऐसी जरा महफिलें बरपा होती थी, ऐन वक्त पे अल्लाह ताला आपको सुला देते थे, और जब आप उठते तो उस वक्त महफिल खत्म हो चुकी होती, यानी ये इसमत अंबिया होती है। तो बहरहाल इस दुआ के साथ इस सूरत को खत्म करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपनी इसलाह की तौफीक अता फरमाए और इस सूरत में हमने जो कुछ पढ़ा वो हमारे अमल का हिस्सा बन जाए।